කළෝම් ජී පරිණාමාදේ සිතා සුත්තේ සං ජීවාදී වම්වා හේමනන්නම් යානු රකුදෝතිනු පරිණෝ ජම්මා සජ්ජම් ලතේන සෝවාදා උප්පාදේහි ලතේති කාරණම විචෙල්ල සහෝදී ධම්මං පරුච්චකතා සත්තාන්ත පරුච්චකම් උපජ්ජන්ති අනියමා සිද්ධී ගුණදීසදේ
Yeah. उसकी 10-5 गाथाएं पहले से 10-5 गाथाएं बाद तक और प्रकरण बद्धता लेकर के ये अगर पाठ हो गए तो ये बहुत अच्छा मतलब जैसे समझने के लिए उपयोगी। ये 308 से 311 जो गाथाएं हैं उसका गाथार्थ मैं पढ़ता हूँ, उन्हीं के आधार से अपन चर्चा करेंगे। टीका की एक दो बातें मात्र आज मैं कहूंगा, बाकी पूरी टीका पंक्ति पंक्ति से जैसी यहाँ पढ़ी जाती है चर्चा की जाती है वो तो पूरी 320 गाथा के बाद में अपन टीका से लेंगे। जैसा कि मैंने शायद परसों बताया था कि कल यहाँ पर दोनों टीकाओं के आधार से ग्रंथ पढ़ा गया है और यहाँ तक अपन मुख्य बात तक आए हैं। देखिए जैसे कि अभी विचित्र बात है, ग्रंथ लिखा गया 2000 वर्ष पहले, टीका काल ने टीका बनाई उस ग्रंथ लिखने के 1000 वर्ष बाद, यानी अभी से 1000 वर्ष पहले, तो उन्होंने ये गाथा क्यों लिखी गई, कौन सी ऐसी जरूरत आ पड़ी, ये सोच करके उन्होंने इस टीका में गाथा को ऐसा समा दिया जैसे दूध में मिश्री डाल लेते फिर अपन कहते हैं दूध मीठा हो गया। दूध में परी होने पर भी मिष्टता तो मिश्री में ही रहती है लेकिन इतनी घुल मिल के अभीर हो जाती है जैसे अनुभूति में पर्याय और द्रव्य पर्याय अपने को अभेद अनुभव करती है। जैसे ही गाथा और टीका एक दूसरे से बिल्कुल अभेद रूप से हो गई, हमारी आदत भी ऐसी पड़ गई कोई बात अगर टीका में आई हो तो वो तो है अमृतचंद्र आचार्य की, लेकिन हम निसंकोच ये कह देते हैं कि समय साथ में ये बात कही गई। आभार गोपाल सबको सदाकाल भगवान आत्मा स्वयं ही अनुभव में आ रहा है, ये बात तो किसके है, हमने समय के है, हमें भेद नहीं मालूम पड़ता कि पुण्य पुण्य और हमने समय में किस लय से भेद करें अपन है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, इसके लिए गुरुदेव श्री को मैंने प्रत्यक्ष भोजन कभी कभी दोपहर में प्रवचन करने के बाद तो वो तो मेरे अंदर जाते थे अपने कमरे में, और भक्ति में जाना था इसलिए वो अपना दुपट्टा वगैरह चेंज करते थे कपड़े, क्योंकि वो गर्मी के दिन थे और पसीना आ जाता था तो वो फ्रेश ड्रेस पहनकर के मंदिर में बात हमने दो चार बच्चे भी अंदर घुस जाते थे तो बोलते हैं सब एक गिलास पानी भी पीते थे प्रदर्शन के बाद ऐसा दौड़ते बोले हाँ भरत क्षेत्र चिंता दीजिए क्या नहीं कितना मतलब उनको सारी सर बहुमान जैसे ज्ञानी को ज्ञान भाव का बहुमान होता है जैसे व्यवहारिक धरातल पर गुरुदेव को ये समय का ग्रंथ और उसकी टीका का बहुमान था तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसे प्रश्न के संदर्भ में ग्रंथ को प्रस्तुत कर दिया असल आत्मनो असल सत्यम दृष्टम दृष्टांत पुरस्कृत आख्या भूमिका बनाई असल का दबाव समझाना है भाई और एक बात समझ लेना आत्मा सर्द मैंने दो चार दिन पहले भी यहाँ कहा है संज्ञा है कि सर्व नाम जीव और आत्मा में क्या अंतर है इसलिए चोरण जी ने कहा थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए उससे बड़े ग्रंथों का अर्थ खुलता है छह द्रव्यों में कोई आत्मा नाम का द्रव्य है जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल संस्कृत में जो मतलब कैपिटल अंग्रेजी में जो मतलब कैपिटल आई का होता है रवि भाई संस्कृत में वो अर्थ आत्मा का होता है मैं अभी इसके लिए मैं किसी गाथा की टीका की पहली पंक्ति पढ़ूंगा जब गाथा में चर्चा करेंगे अपन तो आचार्य देव ने आत्मा का अकर्तापना बताया माने मेरा अकर्तापना आत्मा मेरी हूँ आत्मा यानी मैं हूँ ये फर्स्ट पर्सन के प्रयोग में आने वाला शब्द है हिंदी में जैसे मैं बोलते हैं वैसे संस्कृत में आत्मा हूँ इसमें तो आचार्य ने अजीब के लिए भी अजीबों की कर्म नियम तो आत्म परिणाम ही उत्पद्य मान आत्म गुजराती बोली पोताना परिणामों से उपस्थित थको अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ तो आत्मा मुझे आत्मा का अनुभव करना है ये चिंतन अधूरा गलत है ऐसा मैं नहीं बोलता ध्यान रखना देखो आत्मा और जीव पर्याय वाची कैसे हो गए व्याकरण के हिसाब से तो नहीं मैं और अभय कुमार ये पर्याय वाची मैं तो सर्वनाम है सर्वनाम समझते नाम सर्वनाम मैं तो सर्वनाम सर्वनाम हर कोई अपने स्वयं के लिए मैं शब्द ही बोलेगा है और जीव शब्द जो है तो एक जातिवाचक संज्ञा है जीव क्या है जातिवाचक संज्ञा है जो चैतन्य जाति का है उपयोग लक्षण वाला है अमूर्तिक है ज्ञान स्वभावी है ऐसा एक द्रव्यम पर्याय स्वरूप पदार्थ है स्वभाव भाव ऐसा जो पदार्थ है उसका नाम जीव है समझने आया कि जीव एक पदार्थ की एक वस्तु की एक सत्ता की विशेष जाति वाली सत्ता की संज्ञा है संज्ञा माने नाम और जो सबके लिए लागू हो गए वो सर्वनाम मैं तुम आप यह वह ये शब्द कौन से ये सर्वनाम शब्द तो संस्कृत में आत्मा शब्द भी आत्मन शब्द है मूल तो उसका रूप तो आत्मा आत्मन और आत्मान बनते हैं तो वो आत्मा शब्द जो है वो मैं चाहिए हम कहें हे जीव सबने दर्शन के लिए आत्मा का अनुभव करो इसका मतलब ये होगा तो तुम अपना अनुभव करो ये सुना ना तो हम तो करते ही हैं अपना अनुभव मैं मनुष्य हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं गुजराती हूँ मैं मराठी हूँ मैं खंडेलवाल हूँ मैं भारतीय हूँ गुजरे में कल सुरक्षित की नीति हम थी मुंबई वाला तो कौन है ऐसा वो मैं का अनुभव नहीं करता इसके लिए आप मैं कौन हूँ वाला जो निबंध है डॉक्टर साहब का विकरा विज्ञान पाठ वाला भाग तीन में शायद उसको आप देखें तो उसका पहला पेज उसके तीन पैरों का उसमें मैं यही कहा कि आप कहेंगे आप क्या बात करते हो, मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। अरे हम तो जानते ही हैं, आप भी जान लो कि मैं कौन हूँ। मैं बड़ा पंडित हूँ, समझ में आया, मैं सेठ हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, कृषि इत्यादि इत्यादि। तीन नयेपने का अनुभव के बिना कोई जीव रहता ही नहीं है। तो आत्मा का अनुभव तो सबको है, इसके साथ आत्मा का अनुभव कहो चाहे नये का अनुभव कहो। ये सवाल जैसे भाई जिसमें आपने नये बना मान रखा है वो आप हो नहीं, और जो असल में आप हो उसका आपको पता नहीं। वो बात चलेगी अज्ञान में ही प्रश्न उठे कि आखिर इस अज्ञान का अंत कैसे हो, यही प्राणांतर है अज्ञान का। आजादी की लड़ाई गुलाम देश वालों ने लड़ी थी, उदाहरण सर्व प्रसिद्ध है। तो आत्मा के अनुभव का मतलब है चेतना का अनुभव, और चेतना की शास्त्रीय भाषा हो गई, और थोड़ा बोलचाल की भाषा में कहने तो ज्ञान का अनुभव, क्योंकि ज्ञान स्वसंवेदनशील है। कि आत्मजाति टीका में एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया अमृत चंद्र देव ने परिशिष्ट में, क्योंकि आप ज्ञान में आत्मा में तो अनंत गुण है, अब आत्मा ज्ञान को असाधारण लक्षण क्यों कहते? ज्ञान को अनंत गुणों की एक ही हैसियत है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई कम महत्व का हो कोई ज्यादा महत्व का हो ऐसा भी नहीं। आत्मा मुझे सभी गुणों की समान स्थिति है ना, है कोई भेदभाव नहीं है उधर। तो आपने तो ज्ञान को ऐसा ऊंचा बना दिया कि सारे गुणों को ज्ञान के पेट में धर दिया। ज्ञान ही आत्मा है, समझ में आया? मैंने ज्ञान ही मैं हूँ, ज्ञान ही आत्मा का क्या हुआ? ज्ञान ही मैं हूँ। मैं ऐसे बच्चों को सिखा रहे थे, तुम्हें कौन हो? बोले मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका आपको क्या समझ में आना चाहिए? मैं ज्ञान हूँ। तो ज्ञान का अनुभव वो आत्मा का अनुभव। इस बात को आचार्य देव ने पंडरी गाथा की टीका में बहुत सफलता पूर्वक स्पष्ट किया है। तेरवा कलश भी है, आत्मानुभूति, ये ज्ञानानुभूति वही आत्मा की अनुभूति है। तो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। अभी भी मान लो शिष्य को समाधान नहीं हुआ तो ज्ञान की अनुभूति का क्या मतलब होता है? देखो सुखदेव जी में बता देते हैं, ज्ञान का अनुभव माने अकर्ता बनने का। फिर मैं ये वाणी बोलता हूँ, समझ में आया? मैं पैसा कमाता हूँ। आप देखिए जितने भी जिनागम के अध्यात्म के कहे वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने वाले, वस्तु की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले जितने भी नियम सिद्धांत हैं, उपादान निमित्त के संदर्भ में हो, सर्वज्ञ पर्याय के संदर्भ में हो, सत्कार की बात हो, गुरुदेव ने इन सब को हमारे जीवन में कदम कदम पर जो व्यवहार होता है, जो घटनाएं घटित होती हैं, उस पर लागू किया। वो भाई रोटी नहीं बनाती है, पेट्रोल से मोटर नहीं चलती है। फिर भाई साहब ने बताया था वो पाकिस्तान में चर्चा हुई थी, चश्मा किसके आधार से है? ये कोई हंसी मजाक की बातें नहीं है, ये वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने वाले प्रसंग है। ये सब लोगों को उसमें मजाक नहीं है कि सौंदर्य मोटर बिना पेट्रोल के चलती है। ये इस संदर्भ में आप ये शास्त्रों की बातें केवल शास्त्र पढ़ते समय समझ लेती है, स्वाध्याय मंदिर के दीवारों के भीतर ही चर्चा की है। तो यहाँ से बाहर निकले तो भाई अपन लोग तो साहूकार है, यहाँ का माल बाहर नहीं ले रहा है, पीड़ी हुई पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को लेकर नहीं जाना, जहाँ की तरह छोड़ के जाना। तो बाहर जाओ तो फिर बाहर ही बात, वो बात अलग है, ये बात अलग है। ऐसी बहुत धारणा है लोग है। देखो मंदिर में स्वाध्याय मंदिर में लौकिक चर्चा नहीं करना, विषय दशाएं की चर्चा नहीं करना, लोग व्यवहार नहीं निभाना, जहाँ तक कि वीरेंद्र देव के सामने किसी साधनी से जैन में भी नहीं चल रहे हैं, वो भी एक दोष है क्योंकि आप तीन लोग की उपेक्षा हुई थी, आपका लक्ष्य उधर नहीं रहा, आपका लक्ष्य उधर से भटक के इधर आ गया है, इतना वो मर्यादा रखी जाती है। तो यहाँ पर बाहर का माल नहीं आ रहा है, वो माल क्या है, वो तो कचरा है, वो तो आपत्तियां हैं, वो तो विकार है, वो तो दोष है, वो क्यों आ रहे हैं इसके पवित्र स्थान पर। लेकिन यहाँ की पवित्रता, यहाँ के जीवन मंत्र, यहाँ का आचार लिविंग, यहाँ की जीवन जीने की कला, वो तो श्वास प्रश्वास में हर कदम पर साथ में होंगे। शायद मैं आया हूँ विराज फूल गया और उसमें ये तत्व ज्ञान क्या काम करेगा, अपने से छूटा हो तो भी आपको ज्ञान नहीं करना, अपनी पर्याय का दोष वैज्ञानिक खानदानी जैसी सॉरी अपना दोष स्वीकार कर, नौकर से छूटा हो, बच्चे से छूटा हो तो क्रमबद्ध पर्याय को याद करना, उपादान को याद करना, क्या करेंगे उसकी छूटने की योग्यता नहीं थी तो छूट गया, अपने से छूटा हो तो फिर अपना दोष देखना है और तो भी दो भी दोष देखे तो ही हाय राम फूल गया, हाय राम फूल गया, मेरे से ऐसा कैसा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसी जो आकुलता मछली हो गए तो वहाँ वस्तु स्वरूप काम में आएगा, ख्याल में आएगा। अरे जीवन के हर प्रसंग में, संयोग योग के हर प्रसंग में ये अकर्ता बना, ज्ञाता बना, वस्तु की क्रमबद्ध व्यवस्था, जे समझ लो मोह का तत्काल नाश करने वाला मंत्र है, ये नहीं हो रहा है अगर मोह का नाश तो समझ लेना इस मंत्र का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे, वो हमारी कमजोरी। देखो आचार्य देव क्या कहते हैं, आत्मा का अकर्ता बना समझाना है, आत्मा के अकर्ता बने का मतलब मेरा अकर्ता स्वभाव, मैं माने ज्ञान, ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो मैं जीव हूँ तो मैं जीव के लिए तो मैं तो आत्मा ही बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा ना, मैं कौन हूँ, जीव हूँ, तो जीव और मैं मेरे लिए तो एकांतवासी हो गए। इसको यूं समझो जीव कितने हैं जगत में, जीव अनंता जयोवन है, जीव है और आत्मा कितने हैं, मैं कितने, मैं एक जीव अनंत है और मैं एक है, मेरे लिए नहीं मैं हूँ, आपके लिए तो मेरे लिए आप सब तो क्या है, पर है, पर है कहो, पर कहो, अजीव कहो। इसलिए देखो आचार्य ने जब 38 गाथा और 73 गाथा में आत्मा के स्वरूप की चर्चा का प्रसंग, ज्ञानी को आत्मा का संकेतन कैसा होता है, अहम इसको क्या बोला, अहम इसको खल शुद्धो दर्शन लाल मयो सदा आरोगी, तो मैं एक हूँ, अहम किसको, मैं एक हूँ, यानी आत्मा मैं स्वयं हूँ और बाकी सब अनात्मा। एक जीव आगम के हिसाब से देखा जाए तो सब जीवों की जीव बन जाए, यहाँ आत्मा का अकर्ता बना यानी मेरा अकर्ता बना, और अकर्ता बने का मतलब जहाँ जहाँ हमने कर्तृत्व के कल्पनाएं कर रखी है वहाँ प्रहार होनी चाहिए। कोई गायक है तो समझ ले वो पुद्गल के प्रलंबन में अपना पद मान रहा है, कोई लेखक है तो समझ ले वो बच्चों के पुद्गल के प्रलंबन में अपना पद मान रहा है, कोई व्यापारी है जो वो ये समझ ले कि पुद्गल की क्रिया है उसमें मैं पना मान रहा है, तो अकर्ता बना अनुभव करने का स्वभाव इन सबका कर्ता में नहीं है, और कर्ता बने का निषेध करने का जब प्रकरण होता है तो आचार्य देव ज्ञाता पने को अत्यंत दृढ़ता पूर्वक स्थापित करते। जैसे 75 नहीं गाथा, जो कर्म और लोकर्म को परिणाम को करे नहीं मात्र जाने, मात्र जाने का क्या है, मात्र क्यों लगाओ, जानना मात्र होता है, जानने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ज्ञान को बाहर जाना नहीं पड़ता, देवों को अंदर आना नहीं पड़ता, तो जानना तो सहज स्वभाव है, उसको देव की तरफ से बोलो तो ज्ञाकार नाम है, उसके उपादान की तरफ से बोलो तो ज्ञानकार नाम है, समझ में आया, करने में आपत्ति, कर्तव्य की कल्पना नहीं आ सकती है। अब इसमें भाषा देखो कैसी है, जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो। जैसे जगत में कला इत्यादि पर्यायों से स्वर्ण अनन्य है, जैसे हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, पर्याय उत्पन्न होती, बोलो गुण भी उत्पन्न नहीं होते, द्रव्य गुण तो सरकार जरूर रहते हैं, उत्पन्न होना नष्ट होना तो पर्याय का धर्म है, पर्याय का स्वभाव है, जन्म मरण तो पर्यायों का नित्य स्वभाव आता है। तो यहाँ तो कहते द्रव्य उत्पन्न होता है, तो भैया भले अनुभूति में पक्षा की क्रांत होता है, ये वहां तक पहुंचने के पहले नए पक्ष कक्षा पार करनी पड़ती, नयों की व्यवस्था को जानना पड़ता है। पर्याय से कटने से देखो तो पर्याय रूप में द्रव्य उत्पन्न होता है, ऐसी बात है। सोने की अंगूठी बनाई तो स्वर्ण ने भी नया जन्म धारण किया, पहले वो दही के रूप में था और फिर जब उसको दही बना करके और उसमें सोना डाला तो सोने का पुनर्जन्म हो गया है। बहुत दिन हो गए घिस गई तो उसके एक काम करो, बढ़िया चूड़ी बनवानी है तो इसको गला की चूड़ी में डाल दो तो उसका चूड़ी बना दो तो सोने का उस रूप में जन्म हो गया। तो पर्याय से नए से भी द्रव्य का कथन होता है, क्या बोला, पर्याय दृष्टि से द्रव्य का कथन होता है। उत्पाद व्यय स्वरूप है तो कौन है उत्पाद व्यय, किसका लक्षण, सर्व का, सर्व किसका लक्षण है, द्रव्य का, सर्व द्रव्य लक्षण, सत्ता वो द्रव्य का लक्षण है और सत्ता कैसी है, सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य आत्मा। ये अपने इस व्यवस्था को भी जान ले रहे हैं तो जब ऐसी गाथाएं और ऐसे कथन आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं, समझ में आया, और घबरा होगी तो फिर गुरुदेव तो है ही अपने साथ में, माँ के गुरु हो तो दोस्त नहीं सकता है, है नहीं भाई, उसमें है ना चाय में सम्य ज्ञान दीपिका में, तो वहाँ तो दूसरे तरफ की बात है, दूसरे प्रसंग की बात है, पर यहाँ तो माथे क्या हृदय में गुरु विद्यमान है तो फिर सारी समझ लो समस्या और कौन सा धर्म खड़ा हो सकता। देखो दस तरह के द्रव्यासिक नए कहे गए, द्रव्यासिक नए के दस भेद हैं, पर्यायासिक नए के छह भेद हैं। और एक और माननीय बात आपको कहूंगा, तेरी गाथा में है उन्होंने कहा कि नौ तत्व जो है भूतार्थ में से जाने हुए समझ, अपन ने तो भेद बनाए नौ तत्व जो है वो नौ तत्व के भेद को जानना, नौ तत्वों को जानना, उसको सम्यक दर्शन मानना विश्वास है और कहना व्यवहार, वो जो कहते नौ तत्वों को भूतार्थ से जाने गए नौ तत्व समझ। अभी मुझे उसकी व्याख्या नहीं करनी ज्यादा, उसकी टीका में अमृतचंद्र देव ने नौ तत्व के साथ में और भी प्रमाण नए और लिखे तीन बोल और जोड़े टीका में, कि प्रमाण में भी इस तरह से देखा जाए तो प्रमाण भूतार्थ है, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद है, ऐसा है ऐसा है, एक शुद्ध चैतन्य वस्तु के अनुभव में देखा जाए तो प्रमाण का कोई विकल्प नहीं है तो वो अभूतार्थ। आप जानते हो नयों के प्रकरण में उन्होंने कौन से नयों की बात की, नित्य व्यवहार की बात नहीं की, उन्होंने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की बात की। तो जो द्रव्य का मुख्यता से अनुभव कराए वो द्रव्यार्थिक नय, पर्याय की मुख्यता से वस्तु का अनुभव कराए, ये तो अपन तोड़ के कहते हैं वेद की भाषा की पर्याय पर्यायार्थिक नय पर्याय को जानती है, वस्तु स्थिति का यह है कि पर्याय की दृष्टि से वस्तु जानी जाती है। और जब उन्होंने उन दोनों नयों को प्रारंभिक भूमिका में भूतार्थ कहा दोनों को, और आश्चर्य की बात है अभूतार्थ कहने के प्रकरण में बोले द्रव्य और पर्याय दोनों से अनानंदित वस्तु स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए। इसलिए तो कहते हैं भरत क्षेत्र मां आदि सीता जीजे क्या नहीं द्रव पर्याय दोनों से अनानंदित। अरे हम तो कहते वस्तु द्रव पर्यायात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, और ये कहते द्रव पर्याय दोनों से अनालिंगिक है, यानी वस्तु द्रव्य को भी नहीं छूती और पर्याय को भी नहीं छूती। इसका मतलब है द्रव्य पर्याय के भेद को नहीं छूती, द्रव्य पर्याय के विकल्प को नहीं छूती। ख्याल में आए ना? तो जिस तरह वहाँ पर ये बात इसलिए मैंने बीच में याद दिलाई है, तो वहाँ आचार्य देव ने द्रव्यार्थिक पर्यायिक नय को याद किया। तो द्रव्यार्थिक नय भी दस तरह के, तो भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अभी इनके तीनों से भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। आपको यदि नए रहे तो पुस्तक किसी भी हाथ में नहीं आए, सरस्वती भवन से लेना, उसमें इसका बहुत विस्तार से उदाहरण कहे कैसा चीज है। तो पर्याय की दृष्टि से देखो तो द्रव्य हर पर्याय में जन्मता है, अभी तक हो तो अब नहीं जन्मता, नहीं रहता। द्रव्य तो ध्रुव है, तो ध्रुव वो अपने स्वभाव में है, काल में ही ध्रुव रह जाए। इसका मतलब ये है कि अग्नि गली वाली पर्याय में सोना है, और वो ध्रुव रहेगा मतलब बड़ी खड़ा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, पर्याय अंगूठी भी उत्पन्न हो गई, और द्रव्य सोना और अंगूठी वाली पर्याय में जन्म नहीं, तो कौन जन्मेगा? जन्म नहीं मन पर्ण माने, कौन पर्ण रहेगा? सोनी सुनार से कौन पढ़ेंगे? यदि पर्याय में द्रव्य विद्यमान नहीं होगा तो कौन होगा? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, ऐसा अविनाभावी स्वरूप है ये एक ही वस्तु के तो अवय है ना। यहाँ पर जो बाबू जी की बारे वो उनके विषय की चर्चा चल रही है, वो तो द्रव्य का स्वरूप क्या है, पर्याय का स्वरूप क्या है, क्या करना है, द्रव्य स्वभाव में कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? पर्याय का काम जैसा द्रव्य है वैसा अनुभव करना, ये डिपार्टमेंट है उसका। पर में कुछ कर सकते नहीं है, अपने में कुछ करना नहीं, यानी विश्व में करने नाम की कोई जरूरत नहीं। कार्य से तो डिक्शनरी में से करता शब्द हटा देना चाहिए, समझ में आया? कोई व्यवस्था नहीं है विश्व में, छह द्रव्यों में कोई व्यवस्था नहीं। अरे प्रत्येक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय निश्चित है, जिस समय जो पर्याय का नंबर आएगा वो पर्याय रूप से द्रव्य उत्पन्न होगा, अथवा द्रव्य में वो पर्याय उत्पन्न होगी, समझ में आया? अब कौन करेगा? जो सहज होने वाला है उसको कोई क्या करेगा? होने वाले को कोई क्या कर सकता है? नहीं होने वाले को कोई कैसे कर सकता है? लेकिन क्या करें, वाणी की मजबूरी ऐसी है के अकर्ता स्वभाव के अनुभव का उपदेश भी करने की भाषा में देना पड़ता है। जैसे वक्ता कभी कभी कहते हैं कि हम क्या उपाय, हमें ऐसा काम मिला कि दुनिया को ये समझाना है कि कोई किसी को समझा नहीं सकता। ये कितना कठिन काम, उसका काम मिला होता तो बोलते मेरे इससे दस गुनी श्रोता और भरत होते, जैसे कार होती कि देश की सेवा करो, देश के लिए सावर हो जाओ, ऐसा करो ऐसा करो। एक संस्मरण मेरे मेरे को याद आ रहा है, जब हम कॉमर्स में जबलपुर में पढ़ते थे, ये सन 72 की बात है, आ गया मैं प्रशिक्षण शिविर लगा, तो हम तो पहले भी शिविरों में जाते थे और हमें जाना था प्रदेश का प्रशिक्षण हमें करना था, तो आगे जाना था। तो उस समय रेलवे की ओर से नियम तो दूसरा था कि जो बाहर के लड़के पढ़ते हैं आके उन्हें अपने घर जाने के लिए रेलवे 50% कंसेशन यदि भी देती होगी, तो हमने सोचा तो हम भी लेंगे। तो और उसके प्रोफेसर जैन थे उस डिपार्टमेंट के जो हेड थे, वो टेंशन करने वाले हैं, तो उनके पास हम गए। भाई साहब सुशील कुमार जी दिवाकर थे, हम गए उनके पास कि साहब हमें ये रेलवे का कंसेशन चाहिए, कहाँ जाना है? आगरा जाना है, ताजी लिए जाना है, सिविल में जाना है। हमें पता ही नहीं था उनकी क्या धारणा है, वो क्या मानते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं था। हम शहर ही पहुंच गए, उन्होंने कहा एक काम करो, जो उनका जो लेटर आया होगा सेकंड का, वो कल लेटर लेके आना। तो जयपुर का जो लेटर था गुजरात विज्ञान विद्यार्थी परीक्षा बोर्ड के लेटर हेड पर, वो लेटर दिखाया गया। ऐसा हल्का शब्द बोला उन्होंने, कहां तुम इन लोगों के चक्कर में फंसे, तुम इतने होशियार लड़के है। अरे उस देश में इतनी समस्याएं हैं, खाद्यान्न समस्या है, जनसंख्या समस्या है, उस समय ये वाली समस्याएं थी, आतंकवाद की नहीं थी है। इतनी समस्याएं हैं, वो तरक्की कैसे हो, बेरोजगारी कैसे घटे, उत्पादन कैसे बढ़े, इसमें दिमाग लगाने वाले आत्मा आत्मा वाले के चक्कर में फंसे। मेरी जो सलाह है मैं नहीं जाऊँ, फिर भी ऐसा कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा दूना किराया लगे तो भी मैं दूना किराया देके जाऊंगा, ये तो कंसेशन नहीं है। कर्ता बनेगा उपदेश इतना मीठा लगता है, इतना पवित्र लगता है, इतना ऊंचा लगता है। आप सो रहा है कोई आदमी कर्ता बने, सबसे करते नेता लोग जो है ये वो जनता को ऐसा करना चाहिए, नेताओं को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे उनकी छोड़ो, हमारे है दृष्टि को पलटना चाहिए, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, दृष्टि स्वभाव कर्मुख करना चाहिए। पर कोई बीमारी लेकिन क्या है, ये व्यवहार का ये तो स्वरूप है कि जो वस्तु स्वरूप नहीं है उस भाषा में बोलना पड़ता है। मैं समझ लो मैं कोशिश करता हूँ कि पांच मिनट में ऐसा प्रदर्शन करूं जिसमें कर्ता बनेगा बात उपदेश की बात करो, उपदेश बात सिद्धांत वाला नहीं। सिद्धांत में तो अकर्ता समाज की बात तो बड़े आराम से कही जा सकती है, लेकिन उपदेश की भाषा हे जीव स्वर्गना रक्षक स्वरा की भाव क्या स्वर्ग के रक्षक बनो बनो आके इनडायरेक्टली भूल जा रही है। चैतन्य का स्मरण प्रतिष्ठान करो रे क्या है बोलो है। चैतन्य का स्मरण प्रतिष्ठान करो रे करने की भाषा आए बिना रहेगी नहीं। तो हमारी क्या ड्यूटी है, हम उस भाषा के चक्कर में न उसको परमार्थ न समझे। देखो दो तरह से बीमारी खड़ी होती है, बहुत से लोग ऐसे होते भाषा में भी कर्ता पला स्वीकार नहीं करते। आचार्य कहा व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक होने से अपने को जिनागम में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। आज भी लगा हम उसके वाणी में खड़ा नहीं होने देते, कैसे नहीं होने देते। एक सही घटना है उसी आगरा की, ये समझ लो उसके 12 वर्ष बाद की, 12 के 20 वर्ष बाद की, जब बारकर में हम गए थे ना उसके 20 वर्ष, एक सिविल लगा उस सिविल की आमूषण पत्रकार आई और उसने क्या लिखा, प्रकाश भाई टाइम टेबल लिखा, सुबह 7:30 से 8:30 तक पूजन का ध्यान, अखंडता उनको अखंडता समाज पर दे रहे हैं। तो पूजन नहीं करेंगे सवेरे ध्यान नहीं करेंगे ऊपर, वस्तु स्वरूप तो ऐसे ही है, ध्यान रखना है। लेकिन भाषा जैसी होनी थी, हमें लिखा तो 7:30 से 8:30 तक पूजन का ध्यान, तो 8:30 से 9:00 तक नाचते का ध्यान। और मैंने सोचा कि शरीर में पूजन का ध्यान करना तो ठीक है, करना तो है नहीं पूजन, ध्यान ही ध्यान करना तो कर लेंगे, ध्यान में तो आनंद ही आएगा। मेरी समस्या तो नाचते भी है, नाचता मिलेगा नाचते का ध्यान करना हो तो ये दो चार प्लेटों में सामग्री एक टेबल पे लगा दी जाए, फिर सब लोगों से कहा जाए एक लाइन से निकलो, नाश्ते का ध्यान कर लो, फिर प्रवचन का ध्यान, फिर इसका ध्यान, फिर इसका ध्यान। कितना मजाक बनता है। मैं मेरे एक पीड़ा है समझ लो कि जहाँ व्यवहार की जरूरत है वहाँ व्यवहार की भाषा का प्रयोग आचार्यों ने किया है। मुझे समय था मैंने दो साल पहले वो जो संपादन वगैरह किया था उसमें पूरा ग्रंथ आपके पान से देखने का अवसर मिला और भी कई बार मिला, तो इसमें बहुत सुंदर एक लेख, बड़ा लेख या लघु पुस्तिका लिखी जा सकती है समय काल में व्यवहार लेके प्रयोग कहाँ किए, भले विशेष के लिए किए, आत्मा घटपट रक्त इत्यादि का खर्चा है, व्यवहार में पुगल सम्मा जीवन कच्चा व्यवहार दो दो इच्छा दो। अरे देखो 75 से दुनिया की गाथा 75 से 79 के सुख दुख राग मेरे पुगल का परिणाम, इसमें आदि मध्य अंत में पुगल व्याप्त है, जैसे घड़े में आदि मध्य अंत में माटी व्याप्त है कुमार नहीं, जैसे राग द्वेष सुख दुख में पुद्गल कर्म व्याप्त है चैतन्य भगवान आत्मा। अश्विनी गाथा से श्रीन बदल गए यू चल लेगा, यदि मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तो फाइनेंस में यू चल लेंगे अमेरिका चली गई पूरी कैपिटलिज्म आ गया था। नेहरू जी के सारे सिद्धांतों को बिना घोषणा किए नेहरू को इंदिरा जी क्या बोलते आर्थिक नीति को चुपचाप पलट दिया, कभी देश बचा। ऐसे ही उन्होंने फिल्म बदल दी जीव के परिणाम के निमित्त से खुदगल कर्म रूप परिणमित होता है, खुदगल के निमित्त से जीव विकार रूप परिणमित होता है। कौन से नहीं कर सकें समझ में आए, इसका सामने वाले ने खानी तत्व चर्चा एक बड़ी चर्चा हुई थी, उसमें पंडित खुद के लिए अपने तरफ से जब ये बात रखी केंद्रीय नीति संबंध है तो सामने वाले ने लिखा हम तो बहुत खुश हो गए कि उसने ये तो हमारे मतलब की कथाएं हैं, ये हमारे पक्ष का पोषण करती है, तो आप कहते एक दूसरे करता नहीं है और आप ही का समय था आप ही के पुण्य पुण्य क्या है, वो कह रहे हैं जीव के परिणामों के निमित्त से खुदगल कर्म रूप परिणमित होता है, तो निमित्त होता है लिखा मान बड़े समय सारे बड़े बनते, वो ये भूल गए कि व्यवहार की जगह भाषा में है अभिप्राय में है। समझ में आए, हम भाषा में से उड़ाना चाहते हैं और वो जैसी भाषा है वैसे ही अभिप्राय समझना चाहते, वो व्यवहार को ही परमार्थ मानना चाहते हैं और हम समझ लो केले पे खरीदे तो हम खेलना बिना का केला खरीदना चाहते हैं। ये देखो इसमें से आया तो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से अगर मैं जाना, पहली बात तो यहाँ गुण का मतलब वो त्रिकाली शक्तियाँ वो त्रिकाली गुण की बात नहीं है, आचार्यों ने गुण पर्याय शब्द के प्रयोगों में कोई हार्ड एंड फास्ट जैसे लघु सिद्धांत प्रवेश का भी नियम नहीं रखे, वो तो बच्चों को समझाने के लिए परिभाषा बराबर है, लेकिन पर्याय के दो वर्ष होते कर्मवर्ती और सहवर्ती है, और यहाँ पर्यायों को गुण शब्द से बोला जा रहा है, ऐसे कई प्रयोग हुए कई जगह ऐसे प्रयोग होते हैं। तो जैसे 28 मूल गुण बोलो भरत भगवान जी कितने गुण कहे गए हैं, 40 गुण कहे गए ना, तो उनमें से गुण तो एक ही नहीं है और जो निश्चय गुण कहे जाते हैं चार एक ही पर्याय है और बाकी सब तो खुदगल का तमाशा है खुदगल का खेल है। इसलिए हर वक्ता और श्रोता को एक नियम को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, श्रीमद जी का जो महामंत्र है ज्ञान ज्ञान योग्य है से। तो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, उत्पन्न तो होता है क्षणिक परिणाम, समझ में आया, लेकिन उस परिणाम की दृष्टि से उस द्रव्य को देखा जाए तो उस परिणाम के रूप में वो द्रव्य उत्तर होगा, ऐसा बोला जाता है। जहां तो उसे अनन्य बताना है, उसके तन्मय है, सद्रूप है, अपनी आत्मी नाता प्रवचन का है, शुभ रूप पढ़ने का आत्मा, शुभ रूप पढ़ने का आत्मा शुभ है, शुद्ध रूप पढ़ने का आत्मा शुद्ध है, अरे अशुभ रूप पढ़ने का आत्मा अशुभ है। अशुभ रूप में परिणित हुआ यानी अशुभ भाव के रूप में उस आत्मा का जन्म हो गया। तो परिणाम द्रव्य की तरफ से बात कही जाए तो ऐसी बात आती में आया, इससे वो जो अपरिणामी स्वभाव है, अकर्ता स्वभाव है, दोष स्वभाव है, वो पक्ष कमजोर नहीं पड़ता। वो जहाँ है वो वहाँ उसकी उपयोगिता पूरी है। और दुकान में तो 70 का माल लेता है ना है, उसमें से प्रयोजन भूत छाटना पड़ता है, और जो माल प्रयोजन भूत छाटा जाता है ध्यान देना, वो भी जिस पैकिंग छाटा जाता है वो पैक करके दिया जाता है, और जब तक हम उसका यूज नहीं करेंगे तब वो पैकिंग में रहता है, और जब यूज करने का टाइम आ रहा है तब पैकिंग खोली जाती है। सत्तरी जिस पैकिंग है कि 9 तत्व पैकिंग है, मांग है, जैसे दवा इत्यादि पर्यायों के स्वर्ण अनन्य है, वाह स्वर्ण अनन्य है, अन्य नहीं है, स्वर्ण जुदा हो और कड़ा सुंदर इत्यादि जुड़े हों। देखो भैया, जब जुड़े की व्यवस्था होगी तब जुड़े की तरफ से बात होगी, इसलिए महिला ज्ञान ज्ञान ये योग्य थे कहाँ समझ में उठे। देखो अगर अनन्य नहीं हो पहले सोना जी अंगूठी में परिणित न हो तो ये सोने की अंगूठी है ऐसा कहते हैं, तो सोने की अंगूठी को तांबे की क्यों नहीं कह सकते है कोई, हाँ दवा आता है ना कितने का, सॉरी 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 आपको पहले बता देना चाहिए था, मेरे दिमाग में सवा आठ रहता है जो रोज का है ना रोटी है। तो इसकी चर्चा अपन करेंगे ताकि देश अपनी तैयार हो गई है, कल जो फैल में अपन मिलेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। निर्माण स्तुति बोलिए
कर्म नाथ को मन के प्रसाद।